एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे भारी भरकम उपन्यास की चीरफाड़ करने वाले जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है।
हाँ, ये सवाल कि क्या इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या वो बस हालात और अपनी ख्वाहिशों के हाथ की एक कठपुतली है।
बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं थियोडोर ड्रेजर के क्लासिक नॉवल एन अमेरिकन ट्रेजेडी की।
और ये नाम ही एक अमेरिकी त्रासदी अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस चमकते हुए वादे जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं,
हाँ,
उसकी एक बहुत ही बेरहम पड़ताल है। ये दिखाती है कि उस सपने के पीछे कितना कितना अंधेरा छिपा हो सकता है।
सही कहा। और इस पड़ताल के लिए ड्रेजर एक खास लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसे नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद कहते हैं। मतलब उनका मानना था कि इंसान के फैसले वो आजाद नहीं होते।
हम पर हमारी परवरिश, हमारा माहौल, हमारी गरीबी अमीरी, इन सब का असर होता है।
हाँ, और हमारी अंदरूनी इच्छाएं हम पर हावी रहती हैं। क्लाइड ग्रिफिथ्स जो इस कहानी का हीरो है, या शायद एंटी हीरो,
हाँ एंटी हीरो कहना ज्यादा सही होगा,
वो इसी फलसफे का जीता जागता सबूत है।
और ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। इसकी जड़ें तो 1906 के एक असली मर्डर केस में है, जहां चेस्टर जिलेट नाम के एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को सिर्फ इसलिए मार दिया था
ताकि वो एक अमीर लड़की से शादी कर सके।
जी। ड्रेजर इस केस से इतने हिल गए थे कि उन्होंने सालों तक उस पर रिसर्च की।
तो आज हमारी बातचीत का बड़ा सवाल यही है, क्या क्लाइड ग्रिफिथ्स एक ठंडा शातिर कातिल था, या वो समाज के उस माया जाल में फंसा एक कमजोर इंसान था जिसके पास शायद कोई और रास्ता ही नहीं बचा था।
चलिए क्लाइड की दुनिया में उतर के।
तो कहानी कहां से शुरू होती है?
कहानी हमें ले जाती है कैंसस सिटी। यहां हमारा हीरो क्लाइड ग्रिफिथ्स अपने बहुत ही गरीब और मतलब बेहद धार्मिक माँ बाप के साथ रहता है।
अच्छा।
वो लोग गलियों में घूम घूमकर भजन गाते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, और क्लाइड को उसे सबसे सख्त नफरत है।
उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी।
बहुत ज्यादा। वो अपने आसपास अमीरों की गाड़ियां, उनके कपड़े, उनकी आलीशान जिंदगी देखता है और उसे लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी वो एक तमाशा है।
और यहीं से उसकी पूरी शख्सियत की नींव पड़ती है ना?
उसकी ख्वाहिश कुछ बड़ा करने की नहीं है, बल्कि
अमीर दिखने की है।
हाँ, अमीर दिखने की। उसे लगता है कि अगर उसके पास पैसे और अच्छे कपड़े आ गए तो उसकी ये पहचान, ये गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी।
बिल्कुल, एक तरह का एस्केपिज्म है ये, सच्चाई से भागने की कोशिश।
और उसे इस सबसे भागने का पहला मौका मिलता है ग्रीन डेविडसन होटल में,
जहां उसे वो बेल हॉप की नौकरी मिलती है।
हाँ, सामान उठाने वाले की। और अचानक वो एक नई दुनिया में आ जाता है। महंगी शराब, खूबसूरत औरतें, टिप में मिलते डॉलर, वो पहली बार पैसे की ताकत को महसूस करता है। वो अमीर मेहमानों की नकल करने लगता है, उनकी तरह बात करने की कोशिश करता है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मेहनत करके ऊपर उठने के बारे में नहीं सोचता, वो बस उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है।
चाहे शॉर्टकट से ही सही।
हाँ, और यही हमें उसके चरित्र की पहली बड़ी कमजोरी दिखती है।
बिल्कुल। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ एक चोरी की कार में घूम रहा होता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है
जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है।
जी। और क्लाइड क्या करता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो डरकर शहर से भाग जाता है, और ये उसका पैटर्न बन जाता है
कि जब भी मुश्किल आती है वो उसका सामना नहीं करता, बस भाग खड़ा होता है।
हाँ।
और यही ड्रेजर का प्रकृतिवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ क्लाइड की कायरता है या उसके हालात ही उसे ऐसा बना रहे हैं?
मतलब समाज उसे सपने तो दिखा रहा है
पर उन सपनों तक पहुंचने का कोई सही रास्ता नहीं दे रहा। वो उसे सिखा रहा है कि अमीर होना ही सब कुछ है, पर ये नहीं सिखा रहा कि उस तक पहुंचने के नैतिक तरीके क्या हैं।
खैर, वो इधर उधर भटकता है और फिर शिकागो में उसकी किस्मत थोड़ी बदलती है। उसकी मुलाकात होती है अपने अमीर चाचा सैमुअल ग्रिफिथ्स से,
जो न्यूयॉर्क के लाइकर्गस शहर में बड़ी कॉलर फैक्ट्री के मालिक हैं।
जी। वो क्लाइड पर तरस खाकर उसे अपनी फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी दे देते हैं।
तो क्लाइड को लगता है कि बस अब दरवाजा खुल गया, अब वो उस दुनिया में दाखिल हो जाएगा जिसके उसने सपने देखे थे।
लेकिन यहाँ भी वो बीच में ही अटक जाता है।
कैसे?
अपने सरनेम ग्रिफिथ्स की वजह से वो मजदूरों से तो ऊपर है, पर अपने अमीर चचेरे भाई बहनों की सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता। वो उसे गरीब बेचारे रिश्तेदार से ज्यादा कुछ नहीं समझते,
तो वो न इधर का रहा न उधर का,
बिल्कुल अकेला। और इसी अकेलेपन में उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसकी ही तरह है, रॉबर्टा एल्डन। वो भी एक छोटे से गांव से आई है, फैक्ट्री में काम करती है और अकेली है, तो उनका रिश्ता एक तरह से मजबूरी और अकेलेपन से ही शुरू होता है।
जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है।
हाँ।
लेकिन रॉबर्टा के साथ क्लाइड का प्यार वो उसकी उस असलियत का हिस्सा है जिससे वो भागना चाहता है।
रॉबर्टा एक मेहनतकश सीधी सादी लड़की है।
उसकी दुनिया छोटी और सच्ची है, और क्लाइड को यही दुनिया नहीं चाहिए।
वो तो सपनों की दुनिया के पीछे भाग रहा है।
और वो सपनों की दुनिया उसके सामने तब आती है जब एक पार्टी में उसकी मुलाकात सौंड्रा फिंचले से होती है।
सौंड्रा जो उस शहर के सबसे अमीर खानदान की बेटी है,
खूबसूरत है, पॉपुलर है, और वो सब कुछ है जो क्लाइड बनना चाहता है। सौंड्रा के लिए क्लाइड बस एक नया दिलचस्प लड़का है, पर क्लाइड के लिए सौंड्रा
उस जादुई दुनिया का एंट्री टिकट है।
बिल्कुल यहीं पर ड्रेजर कहानी का वो त्रिकोण बनाते हैं जो इस उपन्यास का दिल है। एक तरफ रॉबर्टा है
जो जमीनी हकीकत है, क्लाइड की जिम्मेदारी है,
और दूसरी तरफ सौंड्रा है जो एक चमकता हुआ सपना है, एक फैंटेसी,
और बीच में फंसा है क्लाइड ग्रिफिथ्स जो नैतिक रूप से इतना खोखला हो चुका है कि उसे सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं दिखता।
वो एक ही वक्त में दो जिंदगियां जीने लगता है।
हाँ, वो रॉबर्टा से छिप छिप कर मिलता है और सौंड्रा और उसके अमीर दोस्तों की पार्टियों में जाता है। वो रॉबर्टा से झूठ बोलता है, बहाने बनाता है।
वो पूरी तरह से सौंड्रा के पीछे पागल है,
क्योंकि सौंड्रा के साथ उसे वो पहचान मिलती है जिसके लिए वो हमेशा तड़पा है।
और फिर वो पल आता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं और त्रासदी का मंच तैयार होता है।
जी, जब क्लाइड सौंड्रा से शादी के सपने देख रहा होता है, तभी रॉबर्टा उसे बताती है कि वो गर्भवती है।
और ये खबर क्लाइड के सपनों के महल पर बिजली बनके गिरती है।
उस जमाने में एक बिन ब्याही लड़की का प्रेग्नेंट होना वो बहुत बड़ा कलंक था। रॉबर्टा पूरी तरह से टूट चुकी है।
उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो क्लाइड पर शादी करने के लिए दबाव डालती है।
वो धमकी देती है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो सबको उनके रिश्ते के बारे में बता देगी।
और ये धमकी क्लाइड के लिए मौत की घंटी जैसी है।
सौंड्रा से शादी, अमीरी, इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाता है। वो पूरी तरह से घिर जाता है। एक तरफ रॉबर्टा की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ सौंड्रा का सुनहरा भविष्य, और वो अपनी आदत के मुताबिक एक आसान रास्ता खोजने लगता है।
तभी उसकी नजर अखबार की खबर पर पड़ती है।
हाँ, कि पास की एक झील में नाव पलटने से एक कपल की डूबकर मौत हो गई और पुलिस ने उसे एक हादसा मान लिया, और यहीं उसके दिमाग में वो भयानक ख्याल जन्म लेता है।
और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो वाकई में हिलाकर रख देता है। ड्रेजर हमें सीधा क्लाइड के दिमाग के अंदर ले जाते हैं।
हाँ, और वो जो कश्मकश है वो कमाल की है।
वो कायर है, उसे खून करने के ख्याल से भी डर लगता है, लेकिन अमीर बनने की उसकी ख्वाहिश वो उस डर से भी ज्यादा ताकतवर है।
वो रॉबर्टा को बहला फुसलाकर एक सुनसान झील, बिग बिटन लेक पर ले जाता है। उसका प्लान है कि वो नाव को पलटा देगा और सब यही सोचेंगे कि ये एक हादसा था। नाव झील के बीचों बीच पहुंचती है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। रॉबर्टा को कुछ गड़बड़ तो लगती है, लेकिन वो क्लाइड पर भरोसा करती है।
लेकिन ऐन मौके पर जब रॉबर्टा उसकी तरफ प्यार और उम्मीद से देख रही होती है, तो क्लाइड की हिम्मत जवाब दे जाती है।
वो उसे धक्का नहीं दे पाता।
वो शारीरिक रूप से हत्या नहीं कर सकता, और यहीं ड्रेजर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं।
बिल्कुल, रॉबर्टा उसके पास आने की कोशिश करती है, शायद उसे दिलासा देने के लिए। क्लाइड घबराहट में उसे रोकने के लिए अपना कैमरा उठाता है और गलती से उसके चेहरे पर मार देता है। रॉबर्टा जख्मी हो जाती है, नाव का संतुलन बिगड़ता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं।
क्लाइड एक अच्छा तैराक है, वो किनारे की तरफ तैरने लगता है,
और वो पीछे से रॉबर्टा के चिल्लाने की आवाज सुनता है, मदद की पुकार,
पर वो मुड़कर नहीं देखता। वो उसे डूबने के लिए छोड़ देता है।
और यहीं उपन्यास का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या ये हत्या थी? कानूनी तौर पर देखें तो उसने धक्का नहीं दिया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन नैतिक तौर पर वो उसे मारने के इरादे से ही वहां ले गया था। उसकी निष्क्रियता और उसका मुड़कर न देखना, क्या वो अपने आप में एक एक्शन नहीं है?
सही कहा, ड्रेजा हमें यहीं फंसा देते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि क्या सोचने और करने में वाकई कोई फर्क है।
अगर आप किसी के मरने की इतनी शिद्दत से कामना करते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो मर जाता है और आप उसे नहीं बचाते, तो क्या आपके हाथ साफ हैं?
क्या निष्क्रियता भी हत्या हो सकती है?
क्लाइड ने उसे मारा नहीं, पर उसने उसे मरने दिया।
कुछ दिनों बाद रॉबर्टा की लाश मिलती है, और उसके साथ मिलते हैं क्लाइड के लिखे वो प्रेम पत्र
जो पुलिस को सीधे उस तक ले आते हैं।
और क्लाइड को तब गिरफ्तार किया जाता है जब वो सौंड्रा और अपने अमीर दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहा होता है।
ये खबर पूरे देश में एक सनसनी फैला देती है, और यहाँ से उपन्यास का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, मुकदमा।
और ये मुकदमा सच को खोजने के बारे में कम और एक तमाशे के बारे में ज्यादा है।
ड्रीजर अमेरिकी न्याय व्यवस्था की धज्जी उड़ा देते हैं।
वो दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा ट्रायल वो दो वकीलों के बीच अपनी अपनी ईगोज की लड़ाई है।
एक तरफ है सरकारी वकील ऑर्विल मैसम, जो एक बड़ा राजनेता बनना चाहता है। उसके लिए क्लाइड को फांसी दिलाना अपनी जीत पक्की करने जैसा है।
वो क्लाइड को एक शैतान की तरह पेश करता है।
और दूसरी तरफ है क्लाइड के वकील, जो उसे बचाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइड तो मतलब मानसिक रूप से बीमार था, उसे तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है।
सच कहीं बीच में एक हो जाता है
और क्लाइड खुद वो कटघरे में एक बेचारे कन्फ्यूज्ड प्राणी की तरह खड़ा है। वकीलों के झूठ के जाल में वो ऐसा फंसता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि झील पर असल में हुआ क्या था।
उसे अपनी सच्चाई पर भी यकीन नहीं रहता।
हाँ,
ये अमेरिकी न्याय प्रणाली पर एक जबरदस्त तंज है
और इसमें वर्ग भेदभाव का एंगल भी बहुत मजबूत है। सॉन्ड्रा फिंचले और उसके अमीर परिवार को इस केस से पूरी तरह से बचा लिया जाता है।
उनका नाम तक अदालत में नहीं लिया जाता
ताकि उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। सारा का सारा दोष गरीब और बेसहारा क्लाइड पर डाल दिया जाता है।
यही तो त्रासदी है। अगर क्लाइड एक अमीर परिवार से होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती।
बिल्कुल, उसे बचाने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते।
लेकिन वो एक आम लड़का है जिसके पास न पैसा है न रुतबा। वो समाज के लिए एक आसान बलि का बकरा बन जाता है।
आखिरकार जूरी क्लाइड को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाती है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है।
और जेल में अपने आखिरी दिनों में भी वो इसी उलझन में जीता और मरता है, क्या मैं सच में कातिल हूँ?
उसने रॉबर्टा को धक्का तो नहीं दिया था, पर वो चाहता था कि वो मर जाए। इसी कन्फ्यूजन में बिना किसी जवाब के उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत दे दी जाती है।
एन अमेरिकन ट्रेजेडी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी इंसान के कामों के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक है और समाज और हालात का दबाव कहाँ से शुरू होता है।
ड्रेजर कोई आसान जवाब नहीं देते, वो बस समाज के सामने एक आईना रख देते हैं। ये उपन्यास एक चेतावनी है हर उस समाज के लिए जो पैसे और शोहरत को इंसानियत से ऊपर रखता है।
ये हमें बताता है कि जब सपने जुनून बन जाते हैं और महत्वाकांक्षा नैतिकता पर हावी हो जाती है तो उसका अंत हमेशा त्रासदी में ही होता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।